एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथसार में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जो पढ़ने वालों के जहन पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ जाती है। मार्कस ज़ुसाक का उपन्यास है द बुक थीफ। ज़ुसाक आपको पता है एक ऑस्ट्रेलिया लेखक हैं, लेकिन उनके माता पिता जर्मन और ऑस्ट्रियन थे। द्वितीय विश्व युद्ध के साय में वो पले बड़े थे, तो उन अनुभवों की गूंज वो हमें इस किताब में सुनाई देती है।
हाँ बिल्कुल, वो पारिवारिक कहानियां कहीं ना कहीं इस उपन्यास की नींव बनी।
सही, 2005 में प्रकाशित हुई और हमें सीधा ले जाती है 1939 से 1945 के नाजी जर्मनी में। पर सबसे दिलचस्प बात क्या है, कहानी हमें सुना रहा है मौत, स्वयं मृत्यु।
हाँ, ये बहुत ही अनोखा नजरिया है। आमतौर पर होलोकॉस्ट साहित्य जो है वो बड़े पैमाने पर अत्याचार दिखाता है, पर ये किताब नाजी शासन में जी रहे आम जर्मन लोगों की जिंदगी पर फोकस करती है, उनके छोटे छोटे संघर्ष, उनकी इंसानियत।
बिल्कुल, तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस कहानी की आत्मा को छुएं, किरदारों के दिल की धड़कन महसूस करें और ये समझें कि शब्दों में मतलब कितनी ताकत हो सकती है, बनाने की भी और मिटाने की भी।
हाँ, और कहानी का दिल है एक छोटी लड़की लीजल मेमिंगा। साल है 1939, लीजल कोई 9 साल की है, अपनी माँ और बीमार छोटे भाई के साथ ट्रेन में, कहीं पालक घर भेजा जा रहा है उन्हें। सफर में ही भाई की मौत हो जाती है और बर्फीले कब्रिस्तान में उसे दफनाते वक्त लीजल की नज़र एक छोटी सी काली किताब पर पड़ती है, शायद कब्र खोदने वाले से गिर गई हो, द ग्रेव डिगर्स हैंडबुक। वो उसे उठा लेती है, मतलब चुरा लेती है।
पहली चोरी।
हाँ, पहली चोरी की हुई किताब, और विडंबना ये कि उसे उस वक्त पढ़ना तक नहीं आता।
यहीं से वो रिश्ता शुरू होता है, एक लड़की, किताबें और मौत, जो ये सब देख रही है।
बिल्कुल, भाई की मौत का सदमा, माँ से जुदाई, ये सब लेकर वो म्यूनिख के पास एक काल्पनिक शहर है मोल्चिंग, वहाँ हिमल स्ट्रीट पहुँचती है, अपने नए पालक माता पिता के घर, हांस और रोजा हबरमैन।
एक अनजान जगह, अनजान लोग, बच्चे के लिए कितना मुश्किल रहा होगा।
हाँ, और मन में एक गहरा खालीपन।
और यहीं से मुझे लगता है कहानी का जो केंद्रीय विरोधाभास है वो उभरता है। एक तरफ नाजी जर्मनी का वो दौर है जहां शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है नफरत फैलाने के लिए, प्रोपोगेंडा के लिए, हिटलर की माइन काम्फ जैसी किताबें हैं।
हाँ, जहर घोलने वाली।
बिल्कुल, और दूसरी तरफ वही शब्द लीजल के लिए बन जाते हैं ज्ञान, सुकून, दोस्ती, यहां तक कि विद्रोह का जरिया।
सही कहा।
ये उपन्यास इसी तनाव को दिखाता है, कैसे एक ही चीज शब्द विनाश का हथियार भी है और इंसानियत बचाने का औजार भी। और लीजल की इस यात्रा में उसके साथी कौन बनते हैं? नरम दिल वाले हांस पापा,
जो उसे पढ़ना सिखाते हैं।
हाँ, और ऊपर से सख्त दिखने वाली पर अंदर से मोम जैसी रोजा मामा,
और वो नींबू जैसे बालों वाला लड़का रूडी स्टेना।
रूडी उसका सबसे पक्का दोस्त। तो सवाल यही है कि ऐसी दुनिया में जहां क्रूरता इतनी आम हो, इंसान अपनी इंसानियत कैसे बचाए रखता है?
और लीजल की कहानी ही इसी सवाल का जवाब ढूंढने की एक कोशिश है। हम उसे देखते हैं एक सहमी हुई बच्ची से धीरे धीरे एक ऐसी लड़की बनते हुए जो शब्दों की कीमत समझने लगती है। हांस पापा यानी हांस हबरमैन, वो रात में बेसमेंट की ठंडी दीवार पर चौक से अक्षर बनाकर उसे पढ़ना सिखाते हैं।
कितना सुंदर दृश्य है वो।
हाँ, और ये सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं है, ये जैसे अंधेरे में रोशनी जलाने जैसा है। फिर उसकी दोस्ती होती है रूडी स्टेनर से, जो हमेशा मजाक में उसे एक चुंबन मांगता रहता है।
हाँ, वो किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है।
और फिर आता है मैक्स वैंडनबर्ग, एक यहूदी नौजवान जो उनके बेसमेंट में छिपता है। लीजल की दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। हवारी हमलों के दौरान जब सब डर से कांप रहे होते हैं, लीजल बेसमेंट में छिपे पड़ोसियों को कहानियां पढ़कर सुनाती है।
शब्दों का मरहम।
बिल्कुल, उसके शब्द डर पर मरहम का काम करते हैं। ये दिखाता है कि शब्द सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि हिम्मत और सुकून भी दे सकते हैं।
आपने हांस हबरमैन का जिक्र किया, वो वाकई इस कहानी का नैतिक केंद्र हैं।
हाँ,
एक साधारण पेंटर है, अकॉर्डियन बजाता है, लेकिन उसका साहस वो असाधारण है। वो न सिर्फ लीजल को पिता का प्यार देता है बल्कि मैक्स को अपने घर में छिपाकर अपनी जान, अपने परिवार की जान जोखिम में डालता है।
और ये कोई आसान फैसला नहीं था उस माहौल में।
बिल्कुल नहीं, लेकिन वो प्रथम विश्व युद्ध के एक पुराने वादे और अपने जमीर की आवाज को अनसुना नहीं कर पाता, और बाद में जब वो सड़क से गुजरते एक भूखे थके हारे यहूदी कैदी को रोटी का टुकड़ा देता है।
हाँ, वो बहुत ही मार्मिक क्षण है।
हाँ, वो आवेग में उठाया गया कदम लगता है
पर वो उसकी गहरी इंसानियत का सबूत है, भले ही इसकी उसे भारी सजा मिलती है।
सही कहा।
उसका अकॉर्डियन ये सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं लगता है ना? आपको क्या लगता है ये अकॉर्डियन किसका प्रतीक है?
बिल्कुल सही कहा। वो अकॉर्डियन सिर्फ संगीत नहीं है, वो हांस की आत्मा है। वो उम्मीद का, सुकून का प्रतीक है। मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी जब हांस युद्ध पर चला जाता है तो रोजा उस अकॉर्डियन को सीने से लगाकर उसकी मौजूदगी महसूस करती है।
अच्छा।
और रोजा हैबरमैन, जो शुरू में इतनी कर्कश और सख्त लगती हैं, उनका भी दिल धीरे धीरे खुलता है। मैक्स को पनाह देने की सहमति देना, हांस के जाने के बाद घर संभालना, ये सब उनकी अंदरूनी ताकत दिखाते हैं।
हाँ, उनका वो रूप भी सामने आता है।
और जब वो अकॉर्डियन से लिपटकर अकेले में रोती हैं, वो उनके उस पहलू को उजागर करता है जो उन्होंने दुनिया से छुपा रखा था, उनका गहरा प्यार और उनकी भेद्यता।
शायद कठोरता अक्सर अंदर की कोमलता को बचाने का एक कवच ही होती है।
हाँ बिल्कुल। और रूडी, आह रूडी, वो कहानी में एक ताजी हवा के झोंके जैसा है। अपनी जेसी ओवेंस घटना, जब उसने खुद को कोयले से काला करके ओलंपिक हीरो की तरह दौड़ लगाई थी,
वो मजेदार वाकया
से लेकर लीजल से चुंबन की उसकी मासूम जिद तक, वो जिंदगी के छोटे छोटे लम्हों का जश्न मनाता है। उसका अंत बहुत दुखद है। वो उस पूरी पीढ़ी का प्रतीक बन जाता है जिसे युद्ध ने निगल लिया।
रूडी का वो अधूरा रह गया चुंबन, वो वाकई दिल पर एक बोझ छोड़ जाता है। याद दिलाता है कि युद्ध सिर्फ जाने नहीं लेता, बल्कि कितने ही अनकहे एहसास, कितने ही छोटे छोटे सपने भी छीन लेता है।
बिल्कुल।
और मैक्स वैंडनबर्ग, जिसका बेसमेंट में छिपना कहानी में एक नया, एक तनावपूर्ण मोड़ लाता है।
हाँ, वो हैंड्स के उस दोस्त का बेटा है जिसने पहले विश्व युद्ध में हैंड्स की जान बचाई थी। एक यहूदी जिसे नाजी ढूंढ रहे हैं, उसका और लीजल का रिश्ता बहुत अनोखा है। दोनों ने नुकसान झेला है, दोनों बुरे सपनों से जूझते हैं।
एक तरह का साझा दर्द उन्हें जोड़ता है।
हाँ, और मैक्स लीजल के लिए हिटलर की किताब माइन कॉम्फ के पन्नों पर सफेदी पोतकर उन पर अपनी कहानियां लिखता और चित्र बनाता है। द स्टैंड ओवर मैन और द वर्ड शेकर।
नफरत के शब्दों को दोस्ती और उम्मीद की कहानियों में बदलना, क्या कमाल का प्रतीक है ये।
हाँ, शब्दों की शक्ति का कितना अद्भुत इस्तेमाल। ये दिखाता है कि अंधेरे में भी इंसानियत कैसे अपना रास्ता खोज लेती है।
और इस पूरी कहानी को हमें सुना कौन रहा है? मृत्यु।
हाँ, जुसाक की मृत्यु पारंपरिक यमदूत जैसी डरावनी नहीं है। वो थकी हुई है, काम के बोझ से दबी हुई, और इंसानों के इस विरोधाभासी स्वभाव से हैरान है। वो कहती है, आई एम हॉन्टेड बाय ह्यूमंस, मैं इंसानों से प्रेत बाधित हूँ।
मतलब इंसानों की अच्छाई और बुराई दोनों से अचंभित करती हैं।
बिल्कुल। वो आसमान के रंगों पर ध्यान देती है, खासकर मौत के वक्त। ये नजरिया कहानी को एक अलग, एक दार्शनिक गहराई देता है।
मौत की नजर से जिंदगी को देखना।
हाँ, ये हमें जिंदगी की कीमत का एहसास कराता है। कहानी में फिर कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो किरदारों की जिंदगी को और मुश्किल बना देते हैं। मैक्स का आना, घर में लगातार डर का माहौल बना रहता है, हर दस्तक पर दिल दहल जाता है,
सोचा जा सकता है।
फिर हांस का वो यहूदी कैदी को रोटी देना, वो एक पल की दयालुता थी, लेकिन उसकी कीमत भारी पड़ी।
हाँ, उसे सजा मिली।
हाँ, हांस को सजा मिली और मैक्स को बेसमेंट छोड़ना पड़ा, क्योंकि अब वो जगह सुरक्षित नहीं रही थी। ये घटना दिखाती है कि उस दौर में इंसानियत दिखाना कितना खतरनाक था।
बिल्कुल। और फिर आखिरी, सबसे विनाशकारी मोड़, हिमल स्ट्रीट पर बमबारी।
हाँ, और मृत्यु हमें पहले ही बता चुकी होती है कि ऐसा होने वाला है।
जुसाक यहाँ पूर्व सूचना, फॉरशैडोइंग का इस्तेमाल करते हैं, मतलब घटना होने से पहले उसका संकेत देना।
हाँ, इससे सस्पेंस शायद कम हो जाता है, लेकिन जब वो पल आता है तो उसका भावनात्मक असर और भी गहरा होता है। एक रात सायरन देर से बजता है, और जब लीजल, जो बेसमेंट में अपनी कहानी लिख रही थी, बाहर आती है
तो सब खत्म, ढेर बन जाती है। ये नाम अपने आप में एक तीखा व्यंग है।
कितना आयरनी है इसमें।
हाँ, बहुत।
ये घटनाएं किरदारों की परीक्षा लेती हैं और उनके असली चरित्र को सामने लाती हैं। अच्छा, तो चलिए उन केंद्रीय संदेशों पर फिर से एक नजर डालते हैं जो ये कहानी हमें देती है। सबसे पहले तो वही, शब्दों की शक्ति का विरोधाभास, कैसे शब्द जहर भी उगल सकते हैं और अमृत भी बन सकते हैं।
हाँ, नाजी प्रोपेगेंडा बनाम कहानियों का आराम और प्रतिरोध।
फिर मानव स्वभाव की द्वैतता, इंसान एक ही वक्त में कितना क्रूर और कितना दयालु हो सकता है। मृत्यु की नज़र हमें यही दिखाती है। और ये किताब, जैसे आपने कहा, आम जॉमन लोगों को शैतान या संत की तरह नहीं दिखाती, बल्कि उनकी जटिलताओं को सामने लाती है। अब क्या कहेंगी, ये किताब कैसे अच्छे और बुरे जॉमन की सीधी श्रेणी से बचती है। मेरे ख्याल से ये किताब हर किरदार को उसकी परिस्थितियों और उसके चुनावों के साथ दिखाती है। मतलब कोई सिर्फ अच्छा या सिर्फ बुरा नहीं है। हान सोर्होज़ा जैसे लोग हैं जो जोखिम उठाकर भी सही काम करते हैं, तो वहीं कुछ पड़ोसी हैं जो नाज़ी पार्टी के समर्थक हैं, और बहुत से लोग बीच में हैं जो डर या मजबूरी में चुप रहते हैं। ये जटिलता ही कहानी को सच्चा बनाती है।
सही, और इसी माहौल में प्रेम और रिश्तों का महत्व और भी बढ़ जाता है ना।
बिल्कुल, लीजल का हांस, रोजा, रूडी और मैक्स के साथ रिश्ता उसे जीने की ताकत देता है। ये दोस्ती और प्यार उस नफरत भरी दुनिया में विद्रोह का एक रूप बन जाता है।
हाँ, और कहानी छोटे छोटे साहसिक कार्यों को भी सराहती है।
हाँ, जैसे मैक्स को छिपाना, वो रोटी देना, चुपचाप किसी की मदद करना, ये बड़े हीरो वाले काम नहीं है, पर यही छोटी छोटी इंसानियत की कड़ियां हैं जो अंधेरे में रास्ता दिखाती हैं।
और ज़ुसाक का लिखने का अंदाज भी, वो भी उतना ही यादगार है। मृत्यु का नजरिया, उसकी वो थकी हुई दार्शनिक सी आवाज कहानी को एक अलग रंग देती है।
और उन्होंने प्रतीकात्मकता का बहुत सुंदर इस्तेमाल किया है। मतलब ऐसी चीजें जो अपने गहरे मतलब की ओर इशारा करती हैं।
हाँ, जैसे किताबें, वो सिर्फ कागज नहीं है, वो ज्ञान, प्रतिरोध और यादों का प्रतीक है।
और हांस का अकॉर्डियन,
वो उम्मीद का, हांस की आत्मा का संगीत है।
बिल्कुल।
और मृत्यु जिन रंगों का जिक्र करती है,
हाँ, वो जिंदगी और मौत की सुंदरता और त्रासदी दोनों को दिखाते हैं।
और जैसा हमने कहा, पूर्व सूचना का इस्तेमाल पाठक को भावनात्मक रूप से तैयार करता है उस आने वाले दुख के लिए।
कुछ पंक्तियां हैं जो जुबान पर चढ़ जाती हैं, जैसे मृत्यु का वो आखिरी वाक्य, आई एम हॉन्टेड बाय ह्यूमंस। आपको क्यों लगता है कि मृत्यु, जो सब देखती है, इंसानों से इतनी प्रेत बाधित महसूस करती है? शायद इसलिए कि इंसानी एकमात्र प्राणी है जो इतनी चरम सीमा तक जा सकता है। मतलब बेपनाह मोहब्बत भी कर सकता है और अकल्पनीय क्रूरता भी। ये विरोधाभास मृत्यु को भी हैरान कर देता होगा, वो रोज देखती है ये सब।
समझ आता है।
और फिर लीजल का अपनी किताब में लिखना, जिसका मतलब कुछ ऐसा है, मैंने शब्दों से नफरत की है और मैंने उनसे प्यार किया है और मुझे उम्मीद है कि मैंने उन्हें सही बनाया है।
ये उसकी पूरी यात्रा का सार है ना?
बिल्कुल, उसने शब्दों का बुरा रूप देखा है, प्रोपोगंडा, नफरत, और अच्छा भी, कहानियां, दोस्ती, ज्ञान, और अंत में वो उम्मीद करती है कि उसने अपनी कहानी में शब्दों का सही इस्तेमाल किया सच्चाई के लिए।
और एक और खूबसूरत बात जो मृत्यु हांस के बारे में कहती है, Sometimes people are beautiful, not in looks, not in what they say, just in what they are.
हाँ, कभी कभी लोग खूबसूरत होते हैं दिखने में नहीं, बातों में नहीं, बस जैसे वे होते हैं उसमें।
ये सच्ची सुंदरता की बात है जो बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी चरित्र से आती है।
हंस की दयालुता, उसका साहस।
ये उपन्यास पढ़ते हुए दिल कई बार टूटता है, सच में, खासकर उन किरदारों को खोते हुए जिनसे हम जुड़ जाते हैं।
हाँ, रूडी, हंस, रोजा।
लेकिन उस दुख के साथ साथ उम्मीद की एक महीन डोर भी चलती रहती है। लीजल का बचना, बाद में युद्ध के बाद मैक्स का वापस मिलना, ये दिखाता है कि विनाश के बाद भी जीवन पनपता है।
सही,
मानवीय आत्मा का लचीलापन, मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी टिके रहने की क्षमता, ये इस कहानी का स्थायी प्रभाव है मेरे ख्याल से।
हाँ, और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ बड़ी घटनाओं या तारीखों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि ये आम लोगों की कहानियों, उनके छोटे छोटे नैतिक चुनावों और उनकी इंसानियत से बनता है।
बिल्कुल,
ये हमें सिखाती है कि मुश्किल वक्त में की गई छोटी सी नेकी भी बहुत मायने रखती है। ये इतिहास को सिर्फ तथ्यों के तौर पर नहीं, बल्कि इंसानी जज्बातों के साथ महसूस कराती है। और ये भी कि कहानियाँ कितनी ज़रूरी हैं, वो हमें जोड़ती हैं, हमें याद दिलाती हैं कि हम कौन हैं, और अंधेरे में भी रोशनी की राह दिखा सकती हैं। पढ़ना, लिखना, साझा करना, ये सब उम्मीद जगाने वाले काम हैं।
तो शायद ये कहानी हमें आज भी ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज की दुनिया में, जहाँ शब्द हर तरफ हैं, सोशल मीडिया पर, खबरों में, हर जगह, हम उनका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं।
हाँ, क्या हम उन्हें जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या तोड़ने के लिए, ये एक बड़ा सवाल है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।